الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج انشاءاللہ سورہ نساء کو ہم شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی یہی ثابت آتا ہے کہ یہ مدنی سورت ہی ہے اور اس میں اپروکسیمیٹ آج جو نمبر آتا ہے وہ 176 آیات ہیں اس کے اندر اور 24 رکوع پر یہ سورت مشتمل ہے. اسے ایک اعتبار سے سورہ نساء کبریٰ بھی کہتے ہیں کیونکہ ایک دوسری سورت جو تقریباً 28 پارے میں آتی ہے جا کے سورہ طلاق کے نام سے اسے سورت النساء کسرا بھی کہتے ہیں بعض روایت میں کسرا, لیکن سورہ نساء کبریٰ بہرحال یہی سورہ نساء ہے جو کہ قرآن پاک کی چوتھی سورت ہے. اس کے اندر اس کی وجہ, اس کو سورہ نساء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نساء بیسکلی عورتوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس میں عورتوں کے جو احکامات ہیں وہ بہت زیادہ ایمپل پائے جاتے ہیں, زیادہ تر انہی سے متعلق جو ان کو ریلیٹڈ ان کے احکامات ہوتے ہیں, اسی وجہ سے اسے سورہ نساء کہا جاتا ہے. اس میں کچھ عورتوں کے بیسک مسائل کے بعد فوراً پھر یتیموں کے بارے میں اور اولادوں کے بارے میں اور ان کے احکامات بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ جی جو یتیم لوگ ہوتے ہیں ان کے مالوں کو ان کے حوالے کیا جائے یا ان کے بارے میں جو انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں کہ ان کا مال ہتایا نہ جائے یا چینج نہ کیا جائے اچھے کے بدلے برا, اور پھر اس کے بعد آگے چل کے نکاح وغیرہ کے جو آتے ہیں فن کو ماتاب القم نسائی فن مسنا وصلاثہ وربا الآخر الایات, یہ آیات عورتوں میں کہ جی تمہیں اجازت ہے دو شادیاں یا تین یا چار نکاح کرنے کی عورتوں سے ایٹ دا میکس. اس میں انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے, چاہے ہم بائبل کو اٹھا لیں, اپنشد انڈین کتاب کو اٹھا لیں, یا کسی فرسٹ ٹیسٹیمنٹ ہو, سیکنڈ ٹیسٹیمنٹ ہو, کوئی زوراسٹرینس کی بک ہو, سکھزم کی بک ہو, دنیا میں کوئی بھی بک میکسیمم جو شادی کے اوپر لمٹس ہے اس میں کوئی لمٹ نہیں لگاتی, جتنے مرضی کرنا چاہے کوئی نہ کرنا چاہے کوئی کتاب اس سے روکتی نہیں ہے. قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جو اس پہ ایک لمٹ لگا دیتی ہے کہ چار سے زیادہ تو کسی صورت بھی اجازت نہیں ہوگی, اور ان چار میں بھی صرف اسی صورت میں اجازت ہوگی جب آپس میں وہ برابری رکھ سکتا ہو. اگر کسی بندے کو یا کسی انسان کو یہ شک ہو کہ ایک کی طرح وہ آپس میں اپنی بیویوں کے درمیان عدل قائم نہیں رکھ سکتا یا برابری نہیں کر سکتا, پھر اس کے لیے حکم باقاعدہ قرآن میں ادھر ہی آگے آ گیا کہ فواحدہ تن, اس کو چاہیے کہ وہ صرف ایک ہی کرے. اور اس کے بعد اصل میں پرابلم یہ ہوتا تھا کہ جو عربوں کے زمانے میں اس وقت بہت ساری جو لوگوں کا رواج یہ ہوتا تھا, لوگ دس دس بیس بیس پچاس پچاس بھی عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے, اور پھر جس کے ساتھ کوئی عدل انصاف کوئی برابری ان میں نہیں ہوتی تھی, جس کی مرضی اس کو وہ کہتے تھے زندہ شوہر والی بیوہ, یعنی کہ اس کا ٹیکنیکلی شوہر ہوتا تھا, شادی شدہ عورت ہوتی تھی, بٹ وہ اس کے ساتھ نہ رہتا تھا نہ اس سے ملتا تھا جلتا تھا, اس کے کوئی حقوق پورے نہیں کرتا تھا. اسلام نے جو اجازت دی چار شادیوں کی اس میں بھی اس نے بالکل اکوالٹی سے, مطلب یہ ہر طرح سے فائنینشلی ان کو اکاموڈیشن وائز ان کی ان ایوری وے ہر لحاظ سے ان کے درمیان عدل ہو, انصاف ہو اور برابری ہو, کیونکہ جو عرب تھے وہ اس کے بالکل فالو اپ نہیں کرتے تھے ان رولس کو, اور ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اور پھر آگے چل کے عورتوں کے میراث وغیرہ کے, کیونکہ واقعات کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 11 میں, اگر ہم چلتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک الی آخر الآیت, تو یہاں سے بیسکلی 14 آیت تک وراثت کے مسئلوں کو اس لیے واضح کیا کیونکہ اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ جو عرب لوگ تھے وہاں پہ ایک بہت ہی مقولہ ایک سینگ تھی مشہور, وہ یہ کہتے تھے کہ ہم عورتوں کو کیسے اپنی وراثت میں اجازت دیں, یہ تو گھوڑا بھی نہیں چلا سکتی, تلوار بھی نہیں اٹھا سکتی اور دشمن کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. تو وہ یہی کہتے تھے اپنی مرضی سے بچوں کے درمیان بھی ناانصافی کرتے تھے اور وراثت کو صحیح طرح سے تقسیم نہیں کیا جاتا تھا عورتوں کی، اور اس وجہ سے اس کے اوپر خاص ایمفسس آیا کہ عورتوں کا ان باقاعدہ حق ہوتا ہے وراثت میں، اپنے شوہر کی، اپنے باپ کی، ہر کسی کی، بلکہ یہاں تک اگر دیکھیں تو ذوی الفروض 8 عورتیں ہی ہیں. ذوی الفروض وہ ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کا قرآن پاک نے خود وراثت میں حصہ متعین کر دیا، وہ اس میں 8 عورتیں ہیں اور صرف 4 مرد ہیں، بیسکلی 8 women and only 4 men جن کا قرآن پاک نے خود حصہ متعین کیا. تو اس سے اس کی امپورٹنس کا ڈیفینیٹلی ایک کلیئر واضح طور پہ ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر فائنلی اسی جو پارے 4th پارے کے بالکل اینڈ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو محرمات ہیں، یعنی کہ اگر آیت نمبر ہم 23 کو دیکھتے ہیں، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم خالاتکم وبناتو الاخی الی آخر الایہ، کہ یہاں سے بالکل جن عورتوں سے نکاح ایبسلوٹلی جائز ہی نہیں ہے، جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ محرم ہیں، محرم عورتیں، ذوی المحرم ان کو کہا جاتا ہے، تو وہ ان سے ایبسلوٹلی ہر قسم کا نکاح یا رشتہ حرام ہوتا ہے کیونکہ، تو اس کے بارے میں کلیئر انسٹرکشنز آتی ہیں اور پھر یہاں پہ 4th پارہ ختم ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو 5th پارہ ہے بیسکلی وہ شروع ہوتا ہے کہ کن عورتوں سے نکاح جائز ہے. 3rd 4th کے اختتام اینڈ میں تو یہ ہمیں پتہ لگا کہ کون کن سے جائز نہیں ہے، اور پھر 5th کے شروع میں ہمیں اگر دیکھتے ہیں یہاں پہ جیسے والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلك الا اخر الايه، یہاں سے ہمیں ان عورتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے جن سے نکاح جائز ہے. اس میں ایک بیسکلی کچھ تھوڑی سی بعض حضرات کو ایک کنفیوژن یہ بھی ہوتی ہے، یہ جو ماور وحل لكم ما وراء ذلك ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مصافحین. یہاں پہ لوگ اکثر ان تبتغوا باموالکم کے لفظ سے کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے مال کے ذریعے خریدو، تو اس سے وہ غلط ایک متعہ وغیرہ کا کانسیپٹ آ جاتا ہے، جو کہ بالکل ایبسولوٹلی صحیح نہیں ہے، کیونکہ آگے کلیئرلی محسنین غیر مصافحین کا لفظ آ رہا ہے اسی آیت نمبر 24 کے اندر، جو کہ بالکل کلیئرلی کیٹیگوریکلی یہ بتاتا ہے کہ عورتوں سے نکاح ہونا چاہیے، بالکل کسی طرح کا ایک جس کو ایکسٹرا میرٹل افیئر کہیں یا کوئی غلط طریقے سے کسی طرح کا کوئی تعلق ہونا، اس کی بالکل ایبسلوٹلی اجازت نہیں ہوتی، جبکہ متا میں نہ گواہ ہوتے ہیں، نہ کوئی پراپرلی نکاح کے لیے کوئی، نہ اس نکاح پہ گواہ ہوتے ہیں، نہ کوئی مہر ہوتا ہے، اور ساری جو نکاح کی شرائط ہیں وہ پوری ہی نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے اس کو اس آیت پہ لانا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، یہ اس آیت کی بالکل ایبسلوٹلی غلط تشریح ہوگی، کیونکہ یہاں پہ لفظ صاف صاف بالکل کیٹیگورک طریقے سے محسنین غیر مصافین کا لفظ آ گیا. پھر اگر ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آیت نمبر 34 کے اندر، تو ہم دیکھتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض الی آخر الآیہ، یہاں سے وہ گھر کے نظام کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں. رجال قوامون علی النساء کے، اور جو مرد ہوتا ہے وہ بیسکلی گھر کا سربراہ، سب کا چلانے والا، اور سب کو اس کے فالو اپ کرنا پڑتا ہے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہو کوئی آقا یا گاڈ ہو جاتا ہے یا ایبسولوٹلی کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، بٹ صرف جو معاشی اور گھریلو معاملات کے حوالے سے جو سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ مرد کے اوپر ہی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. اسی لیے ایک جگہ پہ کہا ہے، کہتے ہیں کو انفسکم و اہلیکم نارا، یہ قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو وہ حکم بھی اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ مرد کے اوپر یہ لائبلٹی ہوتی ہے اور رسپانسبلٹی ہوتی ہے، وہ اس سب کو چلانے والا ہوتا ہے. اور پھر آگے خواتین کے ہی دوسرے مسائل آتے ہیں کہ مثلاً اگر کوئی میاں بیوی میں آپس میں نہیں بن رہی تو وہ عورت کو سمجھائے طریقے سے سمجھانا چاہیے یا اس سے الگ کر دینا چاہیے، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور اس طرح کے احکامات کا سارا ذکر آتا ہے. پھر اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں تو 5th رکوع کے اندر بیسکلی جو اجتماعی سارا خاندانی معاملات ہوتے ہیں ان کے کچھ احکامات آتے ہیں. پھر اس سے اور آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں تو حق عدل اور مساوات، جو ایک برابری قائم کرنے کا نظام ہوتا ہے، اس کی ایک بہت اچھی مثال ملتی ہے یہاں پہ، خصوصاً یہ جو آیت اس ان کے عثمان بن طلحہ کا مشہور واقعہ جو آتا ہے جب فتح مکہ کے ٹائم پہ، ان سے بعض صحابہ نے یہ چاہا کہ یہ اب خانہ، یہ وہ تھے جو کی بیرر تھے بیسکلی خانہ کعبہ کے، تو ان کچھ صحابہ کرام کے دلوں میں خیال آیا کہ آج سے یہ چابی ہمیں مل جائے، لیکن اس کی ایبسلوٹلی بالکل نفی کی گئی، اور وہ چابی انہی کے پاس، اگرچہ اس وقت مسلمان حالانکہ نہیں ہوئے تھے، بٹ سٹل انہی کے پاس یہ آنر اور یہ پریویلیج رہا کہ یہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے کعبۃ اللہ مبارک، یہ ان کو چابی ان کو مل جائے، انہی کے پاس رہے. और इसी फिर बरकत से वो बाद में मुसलमान भी हो गए। और फिर मज़ीद अगर हम से आगे चलते हैं तो ये आयत नंबर 58 में, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दू अल अमानात इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यईज़ुकुम बिही इला आखिर आयत। यहाँ से आगे, या अय्युहल लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। इसके अंदर बेसिकली एक ये मुनाफिक और यहूदी का बेसिकली एक मुकदमा था जो नबी अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुआ। वो मुकदमा कुछ यूँ था कि उस मुनाफिक ने कहीं चोरी की और उसने सारा जो इल्ज़ाम था वो उस यहूदी के ऊपर लगा दिया। उसके जो उसके और उसके घर वाले थे उन्होंने अपनी जैसे चिकनी चपड़ी बातों में नबी अलैहिस्सलाम के सामने बातें बना बना के उस यहूदी के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया सारा। और नहीं, सॉरी, एक्चुअली मुनाफिक और यहूदी का ये वाक्य कुछ इस तरह से था। आई एम सॉरी, मैं गलत कन्फ्यूज़ हो गया। द एक्चुअल थिंग वॉज के ये जो छठे रुकू में बेसिकली इसकी जो बार आयात आ रही है इनके बारे में ये आता है कि जो मुनाफिक था और यहूदी, इनका एक मुकदमा नबी अलैहिस्सलाम की जब खिदमत में पेश हुआ तो वो मुकदमा, क्योंकि मुनाफिक का वीक था तो नबी अलैहिस्सलाम ने उस यहूदी के हक़ में फ़ैसला कर दिया। और जो मुनाफिक था वो कहने को तो मुसलमान था, बट क्योंकि उसको उस फैसले पे खुशी नहीं हुई कि हम मुसलमान होते हुए मुझे कैसे उनके फेवर में फैसला दे दिया, तो वो उमर रज़ी अल्लाह ताला अनु के पास चले गए ये वही केस लेकर जिसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम उस यहूदी की फेवर में ये कर सके थे। अगर हम गौर करें कि इस 58 आयत के अंदर ही ये इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यईज़ुकुम बिही, ये इस आयत के अंदर अगर हम गौर करें तो जो लॉ को जो सुप्रीम होने की जो दी अल्टीमेट मिसाल है वो इस आयत से हमें नज़र आती है कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अनु ने उस जब मुनाफिक उनके पास केस लेके आया तो उसकी गर्दन उड़ा दी कि तुम नबी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ कैसे मेरे पास दोबारा केस लाना है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने एक चीज़ का फ़ैसला कर दिया तो दैट इज़ इट, दिस दैट्स दी एंड, क्योंकि अल्लाह ने साफ साफ कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। बल्कि इसी जगह आगे का अब भी आएगा, वमई उत रसूल फ़कत अता अल्लाह, के असल में जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। तो रसूल के हुक्म को कैसे लेके तुम जब उन्होंने फ़ैसला कर दिया तो मेरे पास आए, उन्होंने ये सोच के उसकी गर्दन उड़ा दी। और यह आयत इसी के ऊपर बिल्कुल एम्फोसिस करती है कि ऐसा करना बिल्कुल मुनासिब क्योंकि नहीं था। और असल जो ईमान कामिल का जो तकाजा था वो यही था कि रसूल की इताअत करो। इसीलिए आगे चल के अगर हम देखते हैं कि आयत नंबर 59 ऑनवर्ड से फिर या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, ये आयात शुरू हो जाती हैं। और फिर आगे इसी के जो रसूल की इताअत करने का जो काम है और जो मुनाफिकीन की निशानी है उससे अगली आयत में फिर शुरू हो जाती हैं कि जो ऐसा नहीं करते उनकी, ये 60 आयत नंबर से, अलम तरल्लज़ीना यज़मूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक इल्ला आख़िर से, तकरीबन ये 4-5 आयतें जो आयत नंबर 65 तक ख़ास तौर से उन लोगों की, इन मुनाफिकीन की निशानियों के बारे में बात करती हैं कि ये लोग बज़ाहिर तो कहने को मुसलमान होते हैं लेकिन दरअसल ये दिल से मुसलमान नहीं हुए होते, इनके दिलों में अभी भी खोट भरा हुआ होता है। और इनकी निशानी वाज़ह तौर पे आयत नंबर 66 में जाते हैं, वला वन्ना कतबना अलैहि वन कत अक्तल अक्तलू अनफुसकुम अखरजू मिन दियारिकुम मा फालू, जब इनको बोला जाता है कि तुम निकलो अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए या घरों को छोड़ो तो वो नहीं निकलते, वो ऐसा करते नहीं हैं। और बहुत कम होते हैं जो मुसलमान, जो ईमान वाले और सही जज्बे वाले जो ऐसा वाकई में करते हैं। तो इन मुनाफिकीन की निशानियाँ बताई गई और फिर इसके बाद फ़ौरन बाद ही ज़ाहिर है जिहाद की तरगीब भी दी गई। और आयत नंबर 75 में ऑनवर्ड्स और फिर 78 में चलते हैं आयत नंबर, तो हम देखते हैं कि बाकायदा इससे मौत से इन अ वे ये बताया गया, आइनामा तकुनु युद्रिकुकुमुल्लाहुल्मौत वलव कुंतुम फ़ी बुरुजिम मुशय्यदा, कि तुम किसी ब्रिज के नीचे बड़े से पिलर के नीचे कहीं छुप जाओ या घर पे बैठे रहो या कहीं अल्लाह के रास्ते में निकल के लड़ो, मौत तो कहीं भी आ सकती है तो फिर डरना किस चीज़ से। और इसके बाद फिर आगे चल के ये मुनाफिकीन की और मज़ीद ये जो साजिशें करते थे, ये जो लोगों को जिहाद व क़िताल की तरगीब के बाद मुसलमानों को ये जो बेसिकली उनके दिलों को फेरने की कोशिश करते थे, उनके दिलों में वसवसे डालने की कोशिश करते थे, उनकी ये साजिशों के बारे में सारा कुछ बताया गया। और फिर उनकी जो खुफिया ये लोग तरगीबें करते थे, किसी तरह के बहानों बहानों से कोई ऐसी कोशिश करते थे कि लड़ना ना पड़े और अल्लाह के रास्ते में ना निकलना पड़े। तो उनकी वाज़े तौर पर बिल्कुल वईद उनके लिए या उनको कैटेगोरिकली एक डराना के बारे में आयतें नाजिल हो रही हैं, और फिर आगे चल के हम देखते हैं कि बिल्कुल शाहाना तौर पे हकमाना अंदाज में अल्लाह सुबहानहू व तआला आयत नंबर 58 को कर दे, फमालकुम फिल मुनाफिकीन फियतैनी वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू इला आखिर लाया, कि यहाँ पे अल्लाह ने बिल्कुल कैटेगोरिकली उनको उनका जो अपने एक हकमाना अंदाज में उनको इरशाद फरमाया, तुम्हें क्या हो गया कि तुम मुनाफिकों के बारे में दो ग्रोह हो रहे हो और अल्लाह ने इनको इनकी हरकतों की वजह से उलट दिया। तो ये मुसलमानों को ख़ास तौर से इनसे इनके बारे में तंबीह की जा रही है। और इसके बाद हम यही देखते हैं कि मुनाफिकों के बारे में और फिर कत्ले अमद की सज़ा के बारे अगला आगे चलते हैं। तो आयत नंबर 93 के अंदर अगर कोई बंदा किसी को जानबूझकर मार देता है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आयत नंबर 93 इसके बारे में 10वें रुकू के अंदर वर्स नंबर जो एग्जैक्ट 93 है, वमई अक्तुल मोमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदीन फीहा ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि वलअनाहु इला आखिर आयत। तो इसमें ये कोई बंदा अगर किसी को जानबूझ के कत्ल करता है तो उसकी सज़ा जहन्नम है। इसके बारे में एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये हो जाती है, बाज़ लोग ये समझते हैं कि अब वो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में ही रहेगा। तो ज़रा सा इसके अंदर कन्फ्यूजन ये इसलिए है क्योंकि चाहे वो अपने गुनाह की सज़ा के लिए डेफिनेटली वो जहन्नम का हकदार है अल्लाह की नज़र में भी और लोगों की नज़र में भी, लेकिन बाकायदा हमें ऐसी बहुत से दूसरे मकामात में मिलता है जैसे मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, एक सीधी सीधी कैटेगोरी का हदीस में आता है, या एक दूसरी हदीस में आता है मन काना आखिरु कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखल अल जन्ना, कि जिसने भी एक कलाम अल्लाह का पढ़ा, अल्लाह पे ईमान लाया, अल्लाह का आखिरी जो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, अब जाहिर है गुनाह की सज़ा तो वो यकीनन भुगतेगा, लेकिन एक ना एक दिन वो यकीनन फिर वो जितना भी बुरा शख्स है अगर उसने के दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो वो एक ना एक दिन जहन्नम से निकल के जन्नत में ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह। और इसलिए इसका बिल्कुल ज़ाहरी वर्ड फॉर वर्ड बिल्कुल मीनिंग लेना इज़ नॉट एक्चुअली इन एसोसिएशन विद द एक्चुअल जिस्ट ऑफ द कुरान। तो इसके बारे में ये थोड़ा सा समझना ज़रूरी था। और फिर आगे हम चलते हैं तो जिहाद की आयतें हैं और उसकी अहमियत और जो मुजाहिदीन की फजीलत हैं, और फिर इसके बाद यहाँ तक कि हिजरत के बारे में जैसे हम देखते हैं, फिर फाइनली आयत नंबर 97 में इन लजीना तवफ़ाहुमुल मलाइका तो ज़ालिमी अनफुसिहिम قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض इस आयत में الاخر इसके अंदर हम देखते हैं कि हिजरत के फ़ज़ाइल को बयान किया जा रहा है, ख़ास तौर से अगर इसी 11th रुकू में ऑनवर्ड्स या वर्स नंबर 97 में। और इसकी अहमियत के बारे में ही अगर हम फाइनली ये 97th आयत से आगे चलते हैं, तो ये एक साहब मुसलमान थे रज़ी अल्लाह अन्हु, हमज़ा बिन कैस, ये मक्का के अंदर थे और बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। जब ये इसी सूरत की आयत नंबर 100 नाजिल हुई, वमई जाहिर फ़ी सबिल्लाही यजिदु फिल अर्ज़ी मुराग़मन कसीरन वसअता मन युख़रिज मिन बैती मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही, ये आयत बेसिकली इन साहब जो हमज़ा बिन कैस थे ये बहुत ज़्यादा बीमार थे, अलील थे, और वो जब ये जिहाद हिजरत को जिहाद से तशबीह दी गई तो उन्होंने अपने बेटों से कहा कि मुझे चारपाई पर डालकर उठाओ और मुझे मदीना ले चलो। अभी वो मक्का से निकले ही थे, उन्होंने हिजरत शुरू ही की थी मदीना की तरफ कि उनका इंतकाल हो गया। तो इस पर अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से ये आयत नाजिल फरमाई, और इसके बारे में आता है कि ये आयत इसी से मुताल्लिक है कि अगर कोई अपने घर से निकल भी गया तो उसका सवाब अल्लाह के ज़िम्मे हो चुका, बेशक अल्लाह उसको सवाब यकीनन इंशाअल्लाह ताला ज़रूर देंगे। और फिर इसी तरह आगे हम मज़ीद देखें कि सलातुल खौफ और सलातुल मुसाफिर जो वगैरह के मुसाफिर के नमाज का मसला, या सलातुल खौफ जब दुश्मन का ख़तरा हो तो नमाज़ पढ़ने का मसला, ये थोड़ा सा ब्रीफली बात करते हुए। और फिर उसके बाद अगला किस्सा जो था वो दैट इज़ द किस्सा अबाउट द यहूदी जिसके ऊपर चोरी का बुहतान लगा दिया किसी शख्स ने, असल में उसने चोरी खुद की थी और उसने जाके उसने और उसके घर वालों ने अपनी चिकनी चपड़ी बातों में नबी अलैहिस्सलाम को मुतासिर कर लिया और ये मनवा लिया किसी तरह से गलत बयानी करके कि जो ये चोरी है ये इस यहूदी ने की है, उस बंदे ने नहीं की जबकि की तो उसने खुद थी। तो इसीलिए ये आयत नंबर जो ये 105 और 106 हम दो आयतों को देखते हैं, इसमें इसका जिक्र आता है कि इन्ना अनज़लना इलैकल किताब बिलहक्क लितहकुमा बैनन्नासि बिमा अराकल्लाहु वला तकुन लिलखाति खाइनीना खसीमा। इसकी वजह ये थी कि नबी अलैहिस्सलाम, अब जाहिर है क्योंकि उनके पास कोई गैब का इल्म तो था नहीं, तो वो उन उस उसके और उसके घर वालों की बातों में आकर उस यहूदी के ख़िलाफ़ करीब था कि फ़ैसला करने वाले थे कि ये आयतें नाजिल हुई। और बाकायदा अगर इस आयत को हम देखते हैं कि एक जो लॉ के सुप्रीम होने की और दी अल्टीमेट अथॉरिटी को बिल्कुल कोई भी किसी सूरत चैलेंज ना करने की मिसाल है, इससे अच्छी दुनिया में कोई नहीं मिल सकती कि एक तरफ़ एक मुसलमान है और दूसरी तरफ एक यहूदी है, और उस यहूदी के फेवर में फ़ैसला आने के लिए अल्लाह ताला ने खुद आयत नंबर 105 और 106 इस यानी एक नॉन मुस्लिम के लिए नाजिल कर दी कि उसके साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, जुल्म नहीं होना चाहिए, बिकॉज इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ अदल, इंसाफ एंड इक्वालिटी एंड लॉ एंड यू नो सुपीर, बिल्कुल अल्टीमेट रिस्पेक्ट ऑफ लॉ। और इस बंदे के बारे में जो जिसने बेसिकली ये उस यहूदी पे झूठा इल्ज़ाम लगवाया था, इसके बारे में फिर आगे जाके ये देखा गया कि वो चोर जो था वो बेसिकली भाग गया, वो मक्का चला गया भाग के, और वो बंदा उसके बाद वहाँ पे मुर्तद हो गया। तो इसके लिए खसूसन फिर आगे जाके आयत नंबर 116 के अंदर हम देखते हैं, 116 में, इन अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरिका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाउ व मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द ज़ल्ला ज़लालन बईदा। कि अगर वो काफिर होके कोई बंदा मुर्तद हो गया तो अब उसकी सज़ा कत्ल है, अब उसके लिए कोई बिल्कुल आसानी और लीनियंसी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद फिर फाइनली इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दोबारा उनकी इत्तबा करने की और उनकी बात करते हुए फिर दोबारा औरतों के मसाइल और ख़ुसूसन मियाँ बीवी के जो इख्तलाफात होते हैं, ये 16वें रुकू में दोबारा एक दफ़ा जाके हम देखते हैं, टुवर्ड्स दी एंड ऑफ द 5th पारा, कि दोबारा इन जो मुनाफिकीन की मजम्मत भरपूर करने के बाद और उन्हें सख्त तरीन अजाब की वईद सुनाने के बाद, एक दफ़ा दोबारा औरतों मियाँ बीवी के हकूक़ के ऊपर बात आ जाती है। और फिर फाइनली आयत नंबर हम देखते हैं कि 158 के अंदर अगर हम चलते हैं, तो फिर यहूद के बारे में दोबारा जो उनके जरायम थे बेसिकली, उनके बारे में दोबारा से एक दफ़ा पैटर्न बदलता है इसी सूरत के अंदर। एंड फाइनली क्लोजिंग के ऊपर हम देखते हैं कि आयत नंबर 158 से ऑनवर्ड अगर हम देखें, बर रफ़ा अल्लाह इलैहि व कान अल्लाह अज़ीज़न हकीमा, ये इसके अंदर क्योंकि यहूद कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को हमने सूली चढ़वा दिया है, तो उनकी इस बात को रद्द करने के लिए बल रफ़ा अल्लाह इलैहि, कि अल्लाह ने उन्हें ऊपर उठा लिया, और इस उनकी बात को रद्द करने के लिए आयत नाजिल हुई। और फिर आगे जो और यहूद की को बेसिकली कैटेगोरिकली गलत साबित करने के बाद आगे हम चलें तो आयत नंबर 171 के अंदर हम देखते हैं कि दोबारा क्रिश्चियंस के ऊपर बात आ जाती है, या अहल किताब ला तगलू फ़ी दीनिकुम वला तकूलू अल्लाह इल्लल हक, कि तुम लोग गलत बात कहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो तुम्हारा अकीद है फ़ादर सन एंड द होली गोस्ट का, जिसको वो कहते हैं ट्रिनिटी के नाम से, जिस जो इनका अकीदा होता है, और ये एक सेल्वेशन के अंदर जो बिलीव करते हैं उस पर इंशाल्लाह आगे चल के सुने बनी इसराइल में कोशिश होगी कि बात हो, लेकिन यहाँ पे इतना ही समझना है कि उनकी बेसिकली इस अकीदे को गलत बताने के लिए कुरान में अल्लाह ने ये कहा कि अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं हैं, अलका इला मरियम व रूह मिनू, के मरियम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने कहा था, जो हमने पीछे सूरत में पढ़ा सूरह आल इमरान में, कुन फयकून, और वो पैदा हुए, और उसके बारे में उस इशारा यहाँ पे दिया गया। और फिर फाइनली आयत नंबर हम देखते हैं कि 172 के लयस्तन के फल मसीह यकून अब्दन लिल्लाही वला मलाइकतिल्मुक़र्रबून व यस्तन किफ अन इबादती इला आखिर आयत। और यहाँ पे फिर जब क्लियरली ये बताने की कोशिश की गई कि जब खुद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने आजी और बिल्कुल इनकसारी के साथ अपनी कोई हद तक महसूस नहीं करते बल्कि इज़्ज़त महसूस करें, तो तुम कौन हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा ठहराने वाले, जब ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद नहीं कहते तो तुम क्यों उनको ज़बरदस्ती यानी कि खुदा बनाने पर लगे हुए हो। ये तो ईसाइयों को बेसिकली एक मज़म्मती बयान है। और फिर फाइनली हम देखते हैं लास्ट आयत में, यस्तफ़तून का कुल्ला युफ्तीकुम फिल कलाला, कलाला वो होता है जिसका कोई वारिस नहीं होता, यानी बेसिकली उसूल या फुरू में से असल वारिस नहीं होता, यानी ऊपर नीचे से मुराद ना बाप होता है ना बच्चा औलाद होता है, तो उसके दूसरी जो करीबी वरसा होते हैं, इस आयत नंबर 176 में उनके ऊपर बात चल रही है कि उनको भी विरासत में फिर हक़ मिलता है। और ज़ाहिर है ये विरासत के बहुत ही डिटेल मसाइल हैं जिनके बारे में इंशाल्लाह जानना हर इंसान पे फ़र्ज़ है। इस इल्मुल मीरास को निसफुल इल्म भी कहा गया है, यानी बिल्कुल दुनिया के अंदर जितने उलूम हैं उनमें आधा इल्म ये निसफुल ये इल्मुल मीरास का है। तो इसे जानना, इन्हें समझना और इन पे अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, कॉज ख़ास तौर से इसमें बहुत ज़्यादा निगलेक्ट होता है और लोग अमूमन इस चीज़ को बिल्कुल इतना सीरियस नहीं लेते, जबकि अल्लाह ने इसके ऊपर ये पूरी सूरत में हम देखेंगे बहुत ज़्यादा एम्फोसिस के साथ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है इन चीज़ों को। तो हमें भी चाहिए कि इसका ख़ास ख्याल करें और विरासत के मामलों में ख़ास तौर से जो शरी हुक्म दिया गया है हमें उसको सही तरीके से किसी से चेकअप करके, किसी आलिम से, किसी जानने वाले से, इल्म वाले से पूछ कर इन मसाइल का हल तलाश करें और उसको अपनी लाइफ में कोशिश करें कि अप्लाई भी करें। होप आज की सूरत में कोई कमी कोताही ना रह गई हो। आज कल इंशाल्लाह सूरह मायदा स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सुबहानक अल्लाहुम्मा अस्तग़फिरुका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।